बोलिए रामचंद्र भगवान की। गुरु नानक देव भगवान की। सबसे पहले इस परम पवित्र और महान वैश्विक ग्रंथ साहिब को मैं मत्था टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। पूजनीय संत जी, इस तीर्थ के व्यवस्थापक गण, सीताराम परिवार के सभी भाई बहन और आप सभी भाई बहनें, वैसे करीब 30-32 साल से भगवत कृपा से और गुरुजनों की कृपा से इस शरीर की जबान से शास्त्र निकलते रहे, आज मेरे हाथ में शस्त्र भी है। मैं आपको अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दिल से कह रहा हूँ कि गुरु नानक साहब के प्रति बचपन से मेरी सहज श्रद्धा बनी हुई है। मैं उनकी विधियों से बहुत परिचित नहीं, लेकिन पता नहीं बचपन से मेरी श्रद्धा उनके चरणों के प्रति बहती रही। विदेश जाऊं और कहीं गुरुद्वारा को देख लूं तो आंख के कोने भीग जाते थे कि क्या हमारी संस्कृति कहां तक पहुंची है, क्या गुरुजनों की वाणी कहां तक अपनी प्रभा और अपनी महिमा बरसा रही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं आज इस दरबार में गुरु नानक देव के चरणों में, उनके इस पावन ग्रंथ साहब के चरणों में कुछ चंद शब्द कहने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। नानक साहब एक ऐसा अवतार हमारी धरा पर हुआ जिसकी दो बात कथाओं में अक्सर मैं कहा करता हूँ कि गुरुदेव ने पूरे संसार को कहा कि एक तो पंगत करो और संगत करो। भोजन की पंगत करो, लंगर करो, और साधजन की संगत करो। जब भी मौका मिले तब साध की संगत करो। आपने स्वयं फरमाया है कि भगवान सीधा मिलता है तो समझ में नहीं आता, भगवान सीधा आता है तो पाचक नहीं बनता, भगवान सीधा मिलता तो शायद हम पहचान भी नहीं पाते, लेकिन साध के संग प्रभु लागे मीठा। नानक देव ने कहा कि जब कोई साध मिल जाए, कोई संत मिल जाए, तो संत के प्रभाव से परमात्मा मीठा लगने लगता है, संत के कारण प्रभु अच्छे लगने लगते हैं, समझ में आने लगते हैं। ऐसी एक हस्ती, ऐसा एक अवतार हमारे देश में पूरे विश्व के जीव जगत के लिए हुआ और उनके दरबार में आज आप सबके सामने कुछ शब्द कहने जा रहा हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। हमारे देश में जितने गुरुजन आए उन्होंने हमें क्या सिखाया, मेरी समझ में गुरुजन कहते हैं तीन वस्तु गुरुजन देते हैं। एक तो समाधान देते हैं, कोई भी बात की समस्या जब जीव के हृदय में उठती है तो गुरुदेव उसका समाधान प्रदान करते हैं, गुरु के बिना कौन समाधान देगा। दूसरा, गुरुजन हम सबको सावधान रखते हैं, समाधान तो देते हैं लेकिन भविष्य के लिए, हमारे हर डगर डगर के लिए हमको सावधान किया करते हैं, अपनी वाणी से, अपने जीवन से, अपनी दृष्टि से, अपनी करुणा से। और तीसरा, जो सही में गुरु है वो एक तीसरा काम करता है और उसका नाम है सुखाधान करता है, जीव के मन में सुख भर देता है। तो ये तीन काम गुरुजन करते हैं, एक तो समाधान करते हैं, दूसरा वो हमको सावधान रखते हैं और तीसरा हमारे जीवन में सुखावधान करते हैं, यानी सुख भर देते हैं, सुख से हमको आप्लवित एकदम सराबोर कर देते हैं। आप कहेंगे कि गुरुजनों की वाणी में समाधान कैसे मिलता है, किस तरह मिलता है? मुझे गुरु नानक देव का ये पंक्ति, ये मंत्र बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार कथा में कोट किया करता हूँ कि गुरुदेव ने फरमाया था कि जो तुधु भावे साई भली का, तू सदा सलामती निरंकार। कितना बड़ा समाधान, ये केवल पंजाब के लिए नहीं, ये केवल हिंदुस्तान के लिए समाधान नहीं था, ये केवल धरती पर रहे जीव जगत के लिए नहीं, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव जगत घूमते रहे होंगे इन सब के लिए ये वाणी का समाधान था कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जो तुधु भावे, जो तुझे अच्छा लगे, जो तुझे प्यारा लगे, बस वही भला है। हमारा कोई तर्क नहीं, हमारा कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं, तुझे जो अच्छा लगे बस वही वही भला है, वही शुभ है, वही मंगल है। कितना बड़ा समाधान है। बात बात में हम निर्णय करते हैं कि ठीक नहीं हुआ, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हुआ, हम ये चाहते थे और ऐसा हो गया, हमारी धारणा ऐसी थी और परिणाम कुछ विपरीत हो गया। उनके सामने कितना वैश्विक जवाब है, जो तू दुभावे भला कर बलि का, जो तुझे अच्छा लगे बस वही ठीक है, हम उसमें जरा भी हस्तक्षेप नहीं करें। गुरु नानक देव के इन शब्दों से प्रभावित होकर, आप सब तो ज्यादा जानते हैं लेकिन मैंने जो पढ़ा है उनके बारे में और विदेशी चिंतकों ने उनके बारे में जो अपना अपना अभिप्राय दिया है उसके मुताबिक मैं कहने जा रहा हूं कि ये इतना छोटा सा मंत्र लेकर विश्व के कई महानुभावों ने अपने जीवन की गति बदल दी, कि हिंदुस्तान का एक अवतार एक छोटे से मंत्र में इतना बड़ा अद्भुत विचार और इतना बड़ा समाधान भर देता है। और उसके आधार पर फिर कई चिंतकों ने उसकी व्याख्याएं की, उसकी मीमांसाएं की। जो तुधु भावे, नानक देव ने कहा कि हे प्रभु, तुझे जो अच्छा लगे बस। तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। बस वही बात है, राम किन चाहे सो होई, ईश्वर जो चाहता है उनकी मर्जी से सब कुछ होता है। टॉल्स्टॉय, बहुत बड़ा नाम दुनिया के विचारकों में, उसने इस पंक्ति पर, यानी ये जो मंत्र आया हमारे देश से गुरुदेव की वाणी से, उन पर कई चिंतकों ने अपने अपने अभिप्राय दिए। मैं आपको इस वाणी के लिए क्या क्या सब लोगों ने कहा उनकी थोड़ी सी बात बता करके विराम लूंगा। उसने एक कहानी लिखी, छोटी सी कहानी लिखी, लेकिन उनका शीर्षक, उनका उनकी बुनियाद गुरुदेव के इन शब्दों पर, शब्दों में थी, यही मंत्र का भाव उनमें है। उसने कहानी लिखी कि एक माता गरीब थी और वो मर गई, उनकी तीन जुड़वा बेटियां थी, विधवा थी, पति तो था ही नहीं, बहुत गरीब थी और तीन जुड़वा बेटियां। मां मर गई है, एक बेटी मां के सीने पर चढ़कर दूध पीने की चेष्टा कर रही, छोटी छोटी तीन बालिका। दूसरी बेटी चीख रही है, मां 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 बोल रही, और तीसरी बेटी को रोते रोते उनकी आंखों में आंसू थम गए थे, अवाक सी हो गई थी। मां मर गई, ऊपर से देवदूत इस जीव को लेने के लिए आया कि ये महिला तो मर गई, उसको ले जाएं। और जब वो मृत्यु का दूत जीव को लेने के लिए धरती पर आता है, और उसने इस गरीब परिवार की जो स्थिति देखी कि पति मर गया, घर में कुछ है नहीं, और ये बेचारी स्त्री मर गई और तीन बेटियां, ऐसी स्थिति में मृत्यु का देव बहुत कठोर माना गया है, उसको करुणा नहीं होती, लेकिन इस दृश्य को देखकर उनकी आंख में आंसू आ गए कि मृत्यु का और जगत का कानून टूटे तो टूटे, मैं इस जीव को लेकर नहीं जाऊंगा। वो खाली हाथ, इतिहास में शायद पहली बार घटना घटी कि मृत्यु का दूत खाली हाथ लौटा। धर्मराज यमराज जो कोई होगा, उसने पूछा कि आप ले आए उसको? बोले माफ करें, मैंने कानून तोड़ा है, और मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं कि मेरी जगह आप गए होते तो आप ही ऐसे ही लौट आते, क्योंकि तीन बालक की जो दशा मैंने देखी, एक दूध पीने के लिए तड़प रही है, एक चीख रही है, और एक बालिका के आंसू गाल पर कपोल पर जम गए हैं। क्या हम काल के सब देवता मिलकर के इस महिला को थोड़ी उम्र न दे पाए, उसको कुछ और जिंदगी न दे सके? कहानी कहती है कि इस बात को सुनकर यमराज या तो धर्मराज जो था उसका मुख्य अधिकारी, उसने हंस दिया, और जो दूत करुणा के कारण वापस लौटा था उसको यमराज ने कहा कि तू ज्यादा समझदार हो गया और तुझे इस समझदारी का दंड मिलेगा और तुम्हें धरती पर जाना पड़ेगा। और ध्यान दे कि धरती पर जाने के बाद पुनः तेरी मुक्ति तब होगी जब तू तीन बार हंसेगा तेरी मूर्खाई पर। जब तुझे हंसी आएगी, तीन बार हंसी आएगी, तब फिर तेरी मुक्ति होगी। उसने कहा जो दंड फरमान हो मैं कबूल करूंगा, लेकिन मैं उसकी जान नहीं ला सकता, ये करुण घटना है, मैं इस दृश्य को नहीं सह पाता। और कहते हैं कि वो मृत्यु का दूत धरती पर आया एक कंगाल का रूप लेकर, हाथ में लकुटी, जर्जर शरीर है, फटे कपड़े, भूखा रुखा जीवन, तो रास्ते पर घूम रहा। कहानी कहती है कि उसी समय एक देहात का चमार, जूते चप्पल बनाने वाला, वो अपने दो तीन बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए, मिठाई लेने के लिए, दीपावली का त्यौहार आने वाला था तो कुछ राशि एकत्रित की थी, वो नगर जा रहा था। नगर जाते समय उसने उस मृत्यु के दूत को, वो तो पहचाना नहीं उसने, लेकिन वो कंगाल कोई वृद्ध पड़ा है, भूखा है, उसको देखकर चमार को करुणा आ गई। उसने पूछा कि आप कौन हैं? बोले दुखी हूं। बोले आपके पास कपड़े नहीं है? बोले नहीं। खाने का नहीं है? दीपावली का त्यौहार आ रहा है? बोले सब ठीक है, लेकिन मैं गरीब हूं। रामचरितमानस में लिखा है नहीं दरिद्र सम दुख जगमा, संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, और संत मिलन सम सुख जगना ही, संतों के मिलन के समान संसार में कोई सुख नहीं है। तो वो चमार, उसको करुणा आ गई, उसने अपने बच्चों के लिए जो कपड़े लेने थे वो इस मृत्यु के दूत के लिए ले लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ मिठाई लेनी थी वो मृत्यु के दूत के लिए ली, सब जितने पैसे थे मृत्यु के दूत के लिए उसने खर्च कर दिए, और सब उनको दे करके चमार ने कहा कि तुम कहाँ रहोगे? बोले कोई ठिकाना नहीं है। तो बोले चलो मेरे साथ, मेरे घर रहियो, मैं तुम्हारा गुजारा करूंगा। वो मृत्यु के दूत को लेकर आता है। चमार की पत्नी ने पूछा कि बच्चों के लिए आप मिठाई लेने गए थे, कपड़े लेने गए थे, ले आए क्या? तो कहा कि मैं गया तो था लेने के लिए, लेकिन इस गरीब को देखकर मैंने उनके लिए सब ले लिया, मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं। तो पत्नी बहुत रोष में आ गई, अपने पति को डांटने लगी, आप में करुणा ही नहीं है, बच्चे नंगे हैं और आप दूसरे के लिए ये सब कराए, बहुत बोलने लगी, गालियां देने लगी, और जो अतिथि के रूप में मृत्यु का दूत आया था उसका अपमान करने लगी। तब ये मृत्यु का दूत पहली बार हंसा, उसने हंस दिया। आदमी अभिमान के कारण दूसरों पर तो बहुत हंसता है लेकिन अपनी मूर्खाई पर कम हंसता है। और जब आदमी अपने कर्म पर हंसना सीख जाएगा तो उसमें सुधार जल्दी हो सकता है। जब अपने कर्म पर हंसना सीख जाए तो वो आदमी पहली बार हंसा, चमार ने पूछा कि तू क्यों हंस रहा है, बोले अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा। उसको हंसी इसलिए आई कि चमार की पत्नी को पता नहीं कि मैं मृत्यु का दूत हूं, चमार के घर तेरे घर रहकर नौकर बनकर जुत्ती बनाऊंगा तो 8 दिन में तू माला माल हो जाएगी, तेरा घर पूरा संपत्ति से भर जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ की जुत्ती देश विदेश में बिकेगी, मेरा हाथ छुआ ही नहीं और चमत्कार हुआ नहीं। लेकिन उसको पता नहीं इसलिए वो गालियां दे रही, इसलिए वो हंसा। फिर तो वो उनके घर रहकर जुतियां बनाने लगा और ये देवदूत के हाथ से बनी जुतियां इतनी बिकने लगी कि सम्राट तक बात पहुंच गई और सम्राट भी अपने जूते वहीं से सिलवा करके पहनने लगा। 6 मास बीते, सम्राट के घर से एक आदमी आया, बहुत बढ़िया चमड़ा कोई विदेश से आया वो लेकर, और इस मृत्यु चमार का नौकर जो था उसको दिया। चमार बैठा था, कहा कि इससे सम्राट की जुत्ती बनानी है, और ख्याल करना कि जुत्ती ही बनानी है, स्लीपर नहीं बनाने हैं। रसिया में उन दिनों में कोई सम्राट मरता था तो जब उसकी ननामी निकलती थी उसका एक ऐसी परंपरा कि उसको स्लीपर पहनाई जाती थी, तो स्लीपर कोई बनाता तो वो अपशुकन माना जाता, अमंगल माना जाता। तो वो दूत ने कहा ये सम्राट की जूती बनानी है, स्लीपर नहीं बनाना है, ख्याल करना। चमार ने भी सूचना दी अपने नौकर को, वो जानता नहीं, वो तो जानता है कि गरीब को मैंने आश्रय दिया और ये सब कर रहा है। तो फिर वो चमड़ा जो आया था सम्राट के लिए जूती बनाने के लिए, 5 दिन में इस देवदूत ने जूती के बदले स्लीपर बनाई। चमार ने देखा कि तू मेरी गर्दन कटाने आया है, तू मेरी हत्या मृत्यु करवाने, सम्राट के लिए जूती बनानी थी और तूने स्लीपर बनाया, ये तो मृत्यु का संदेश है, हमारे यहां स्लीपर देना वो मृत्यु की आगाही है, सम्राट मुझे मार देगा। जब ये सुना तब ये देवदूत दूसरी बार हंसा। चमार को लगा कि समझ में नहीं आता फिर तू क्यों हंसा, बोले समय आने पर बताऊंगा, दूसरी बार हंसा, स्लीपर बन गई थी। इतने में एक दूत दौड़ता दौड़ता आया और कहा चमार को कि नहीं नहीं जूती मत बनाना, स्लीपर ही बनाना क्योंकि सम्राट मर गया है। चमार नहीं समझ पाया उसकी हंसी को। फिर 6 महीने बीत गए और उनकी जूतियां इतनी फेमस, इतनी प्रख्यात हो गई संसार में कि पूरी दुनिया वहीं से ही खरीदती थी। एक दिन वो देवदूत जुतियां बना रहा था, एक बूढ़ी औरत और 3 जवान लड़कियां उनकी दुकान पर जुतियां लेने आई, वो तीनों की शादी होने वाली थी और उन्होंने नाप दिया, जुती का वो दिया, तब वो देवदूत ने देखा कि ये 3 लड़कियां वो तो वो ही हैं, जब एक माँ मरी थी तब एक सीने पर चढ़ी थी, एक के आंसू थम गए थे, एक चीख रही थी, शक्ल तो वही है, ये यहां कैसे, कितना समय गुजर गया। उस बूढ़ी औरत को इस देवदूत ने पूछा कि मैं जुतियां तो बना दूंगा लेकिन आप बताएंगे कि ये 3 लड़कियां कौन हैं? बोले मेरी तो कोई औलाद नहीं लेकिन मेरे पड़ोस में एक गरीब स्त्री रहती थी, उनका पति मर गया था और उनको हृदय रोग का हमला हुआ, वो बेचारी मर गई और ये 3 बालिकाएं उनके सीने पर रो रही थी, मैं पड़ोस में थी, मैंने सोचा चलो कोई बालक नहीं है तो मैं इनको आश्रय दूं और पाल करके बड़ी करूं, तो मैंने उनकी माँ मरने के बाद 3 को अपने पास रखा, जवान किया और आज एक बड़े खानदान में 3 लड़कों के साथ उनका ब्याह हो रहा। और हे भाई चमार के नौकर, मैं तुझे इतना ही कहती हूँ कि यदि उसी समय किसी को करुणा आ जाती और ये 3 लड़की की माँ को और आयुष्य मिल जाती ना तो ये 3 बिचारी कंगाल की कंगाल रहती, उसको न कोई अच्छा घर मिलता, न अच्छा वर मिलता, अच्छा ठिकाना मिलता, लेकिन उनकी माँ मर गई, 3 मेरी शरण में आ गई और आज एक बड़े अच्छे खानदान में धामधूम से उनकी ब्याह होने लगी। तब वो देवदूत तीसरी बार हंसा। चमार ने कहा कि समझ नहीं आती कि तू क्यों हंस। बोले बस तुम्हारा और मेरी लेन देन पूरी हो गई, मेरा 3 बार हंसना पूरा हो गया, मैं देवदूत हूँ, मैं जा रहा हूँ, लेकिन धरती पर से एक महान अवतार का संदेश लेकर स्वर्ग में जा रहा हूँ। मैं वहीं जाकर कहूँगा कि ये सूत्र सच है, ये मंत्र सही है कि जो तुधु भाव है साईं भले, जो मालिक को अच्छा लगता है वही सही है, हमें उनमें विक्षेप करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये बच्चियों को बचा, इनकी माँ को बचाने की चेष्टा मैं करने गया, और मैंने यदि यमराज से कबूलात करवा ली होती और उनकी आयु बढ़ा दी होती तो शायद ये तीनों लड़कियाँ कंगाल की कंगाल रहती। लेकिन मालिक का कोई हुक्म दूसरा ही था, उनका इरादा कोई दूसरा ही था, और आज एक अच्छे घराने में वो जा रही हैं। तो पक्का हो गया कि जो प्रभु को अच्छा लगता है वही सही है। हम उन अंदर विक्षेप करें वो हमारी गलती है, हमारी मूढ़ता है। इस वाक्य से, इस मंत्र से नानक देव ने पूरे जगत को समाधान दिया कि जो हरि कर रहा है, जो परमात्मा कर रहा है, उनको जो अच्छा लगे वही होने दो। नदी में तैरना अच्छी बात है, ठीक है, किसी कोई तैराक को तैरना आ जाए तैर ले, नदी में डूब जाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सयाना आदमी वो है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए तब नदी के साथ बहना सीख ले, नदी के साथ कोई चेष्टा किए बिना अपने आप को तरंगित कर दे। गुरुदेव की वाणी ये कहती है कि परमात्मा की इच्छा में अपने को बहा दो, उसमें तुम्हारी बुद्धि मत डालो, तुम्हारा तर्क मत डालो, तुम्हारी कोई भी चीज बीच में मत डालो। जितना हम अपने ओर से डालेंगे इतना वातावरण बिगड़ता जाएगा। क्योंकि मैं बार बार कथाओं में कहता हूँ कि संसार में तर्क और बुद्धि से कुछ नहीं बना। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा एकत्रित कर सकते हैं, प्रतिष्ठा एकत्रित कर सकते हैं, पदार्थ एकत्रित कर सकते हैं, परमात्मा को कहीं एकत्रित नहीं कर पाया, तर्क काम नहीं कर पाता। तर्क से क्या होता है? एक बहुत बड़ा जहाज था, उस जहाज में किसी एक आदमी की नियुक्ति करनी थी, तो जहाज का जो कैप्टन था उसने इंटरव्यू रखा। एक युवान इंटरव्यू देने गया तो कप्तान ने उसको पूछा, नहीं कोई जरूरत, कप्तान ने इंटरव्यू में पूछा युवक को कि तुझे जहाज पर नौकरी करनी है? बोले हाँ। तो बताओ समंदर में बहुत तूफान आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो युवक ने कहा एक लंगर डाल दूंगा तो जहाज रुक जाएगा और बच जाएगा। कैप्टन ने कहा कि तूफान सामान्य नहीं है, बहुत तेज तूफान है, तो क्या करेगा? तो बोले दूसरा लंगर डाल दूंगा। कैप्टन ने कहा कि समझ लो सामान्य तूफान नहीं है, अब मरा तब मरा, बस मरे ही समझो, इतना भयंकर तूफान है, तो क्या करोगे? बोले तीसरा लंगर डाल दूंगा। तो कैप्टन ने कहा कि नहीं इससे भी ज्यादा भयंकर तूफान है, तो फिर क्या करोगे? बोले चौथा लंगर डाल दूंगा। तो कैप्टन ने कहा इतने लंगर तू लाओगे कहां से? तो बोले तू जहां से तूफान लाता है वहीं से मैं लंगर लाऊंगा। तू इतना तूफान तेरी बुद्धि से ला रहा है, तेरे तर्कों से ला रहा है, तो मैं लंगर भी मेरे तर्कों से ला रहा हूं। तर्क से कुछ बात नहीं बनती, प्रभु की इच्छा में बह जाए। गुरु नानक देव की वाणी ये कहती है कि हे प्रभु, हे साईं, हे भगवान, हे मालिक, तुझे जो अच्छा लगे बस वही भला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, बस जिसमें तेरी मर्जी हो। तो संसार भर को गुरुदेव ने समाधान दिया। कोई भी घटना, मैं आज या परसों ही शायद कल ही कह रहा था कथा में कि घर में 2 व्यक्ति हो और पति पत्नी 2 हो और पति भोजन करने बैठा है तो रोटी भी पत्नी परोसेगी, लड्डू भी पत्नी परोसेगी, दाल भी पत्नी परोसेगी, चावल भी पत्नी ही परोसेगी और चटनी भी पत्नी ही परोसेगी। वैसे और फिर कोई नाराज नहीं होता, चटनी भी खा लेता है, मिर्ची भी खा लेता है पत्नी। वैसे जीवन में सुख भी हरि देता है और दुख की चटनी भी वही देता है, उसमें राजी हो जाना चाहिए कि परमात्मा ही, उनकी इच्छा से ये सब चल रहा। कितनी सेवा की कितनी बड़ी महिमा गुरुद्वाराओं ने संसार को दी है। दुनिया में द्वार 3 है, एक तो राजद्वार है जिसका कोई मूल्य नहीं है, उनमें भी आजकल तो कोई मूल्य नहीं, राजद्वार होता है। दूसरा होता है प्रभु द्वार, परमात्मा का द्वार, और तीसरा होता है गुरुद्वार। ये तीसरा। और परमात्मा के द्वार में जिसको जाना है उनको इस द्वार से ही गुजरना पड़ता है। इस द्वार से जो गुजरने को राजी नहीं वो परमात्मा के द्वार में, प्रभु द्वार में कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो प्रभु का एक द्वार है, वहां पहुंचने का, जैसे हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम द्वारे तुम रखवारे, एक राम द्वार है वहां जैसे हनुमान जी बैठा है। हनुमान जी कौन है? कृपा करहुं गुरुदेव की नाई, संसार के गुरु है, तो ये गुरुद्वार है और गुरुद्वार से ही राम द्वार में पहुंचा जा सकता है। वैसे गुरुद्वार है, एक मार्ग है, एक पंथ है जो प्रभु द्वार में हमको प्रवेश कराता है। तो मेरा कहने का मतलब, सावधान करते हैं गुरुवाणी से, विश्व सावधान हो जाए तो विश्व में तत्क्षण शांति आ सकती है। कितनी एकता, कितना सेतुबंद। मैंने पढ़ा है, मैंने दर्शन किया है और संत जनों से सुना भी है, कितनी बार राम शब्द का प्रयोग नानक देव कर रहे हैं, बार बार परमात्मा के नाम का उपयोग अपनी वाणी में कर रहे हैं। सावधान कर देते हैं जगत को कि तुम सावधान रहो अपने धर्म के लिए, अपनी सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक सावधानी प्रदान कर। तो गुरुजन हमको सावधान करते हैं और तीसरा, गुरुजन हमको सुखाधान करते हैं, हमारे जीवन में सुख भर देते हैं। इतनी गर्मी है, इतनी भीड़ है, घर में आप बैठोगे तो एसी कमरा होगा, हर तरह की सुविधा होगी, यहाँ सुख के कोई साधन नहीं, लेकिन गुरु की वाणी विराजित है तो ऐसे ही सुखाधान हो जाता है। अपने आप व्यक्ति सुख महसूस करने लगती है। सुख कब मिलेगा, सुखाधान कैसे होगा बिना गुरु? रामायण का प्रसंग है, दशरथ जी को पुत्र नहीं था तो बहुत दुखी थे, लेकिन ये दुख लेकर जब गुरुद्वार गए, वशिष्ठ जी के द्वार गए, तो तुलसीदास जी ने लिख दिया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना दुख सुनाया और फिर अपना सुख सुनाया। वशिष्ठ गुरु ने पूछा कि आप तो दुखी होकर आए थे और दुख आपने गाया भी, लेकिन फिर आप सुख सुनाने लगे हैं, तो सुख अचानक कहाँ से आ गया? तो तुरंत वशिष्ठ जी को दशरथ जी ने कहा कि बाबा दुखी ही था, लेकिन आपका दर्शन करने से सुख हो गया, आपके पास आने से सुखाधान हो गया, मेरे जीवन में, मेरे हृदय में सुख का एक सिंहासन बन गया। तो गुरुजन तीन वस्तु किया करते हैं मेरे भाई बहन, एक तो जीव के मन का समाधान करते हैं, दूसरा जीव को सतत सावधान रखते हैं और तीसरा जीव के अंदर सुख भर देता है। ऐसी गुरुओं की जो महिमा है उनको बहुत सुनिए, ग्रंथ साहब के पाठ की कितनी महिमा है, उनके श्रवण की कितनी महिमा। स्वयं नानक देव ने कहा है, नानक भक्ता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नासु, नानक भक्ता सदा विगासु। गुरु नानक ने फरमाया कि तुम सुनते रहो और सुनिए दुख पाप का नासु, केवल सुनोगे तो तुम्हारे दुख और पाप का नाश हो जाएगा, क्योंकि पाप बीज हैं और दुख उनका फल है। इंसान पाप करता है तो बीज बो देता है और फिर दुख के रूप में उसका फल भोगता है। नानक देव ने कहा कि नानक भक्ता सदा विगासु, सुनिए दुख पाप का नाशु, तुम सुनो गुरुवाणी को, सुनो तुम्हारे पाप का नाश हो जाएगा। इन शब्दों से पाप समाप्त हो जाएंगे, पाप रुक नहीं पाएंगे। सभी शास्त्रों का सार करके जीवन में सुख भरने की चाबी प्रदान कर दी। तो मेरे भाई बहन, ऐसे दरबार में आज हम उपस्थित हैं, इस दरबार से, गुरुजनों की वाणी से हम समाधान प्राप्त किया करें, हम सावधान होते रहें और हम आत्म सुख का अनुभव करते रहें, हमारे हृदय में सुख का अनुभव होता रहें। और इसीलिए हम थोड़ा झुकना सीखें। आप सबने देखा होगा, सबका अनुभव होगा कि घड़े को तुम पानी में थोड़ा, नदी के पानी में थोड़ा झुकाओ तो पानी अपने आप घड़े में भर जाता है, पानी तुरंत अपने आप बह जाता। वैसे जब हम दरबार में थोड़े झुकते हैं तो सुख और शांति अपने आप हमारे जीवन के घड़े में प्रवाहित हो जाती है। लेकिन थोड़ा झुकना हम सीख लें, थोड़ा शरणागत होना हम सीख लें, थोड़ा आश्रित होना हम सीख लें, बस और विशेष न कहकर मैं पुनः एक बार इस पावन पवित्र परम पावन ग्रंथ साहब को प्रणाम करके, गुरुजनों को वंदन करके, संत जी और यहाँ की कमेटी के सभी अधिकारी और सेवक गण को धन्यवाद देता हुआ कि मुझे, मैं फिर एक बार कहूँगा, आपकी सराहना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक शाम राम के नाम, वैसे दिल्ली में तो नहीं है ये, हम रास्ते में कह रहे थे कि दिल्ली में तो नहीं लगता, खबर नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन एक एक पक्का था कि और कहीं नहीं जा रहे हैं, गुरुद्वार जा रहे हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं थी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दर्शन के लिए यहाँ आ पाया और भगवान ग्रंथ साहब के चरणों में मेरे वाणी के कुछ पुष्प चढ़ा पाया। विशेष न कहकर हम सबके जीवन में कदम कदम पर समाधान प्राप्त हो, हम कदम कदम पर सावधान बने रहे और हम सबको सर्वे जनाः सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके जीवन में सुख प्राप्त हो, ऐसी प्रभु के चरणों में कामना करता हुआ मैं मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे अच्छा बताया संत जी ने ये जो एक कृपाण देते समय कि ये इसीलिए दी जाती हैं कि अच्छे काम के लिए उसका उपयोग किया जाए, निर्बल की रक्षा के लिए, दीनहीन की सुरक्षा के लिए। हमारे देव देवियों के पास शास्त्र भी थे और शस्त्र भी थे, और शास्त्र और शस्त्र का संगम, जिसके पास केवल शस्त्र है ना उसने हिंसा की है, जिसके पास केवल शस्त्र है विश्व में इन लोगों ने तोड़ा है समाज को, लेकिन जिसके पास शास्त्र और शस्त्र दोनों हैं उन्होंने समाज में सेतु बंद कर दिया है, उन्होंने संसार को जोड़ दिया है, संसार को एक कर दिया है। तो आइए समाधान प्राप्त करें, सावधान रहें और सुख का अनुभव करें ग्रंथ साहब की कृपा से। मैं फिर एक बार प्रसन्नता व्यक्त करता हुआ मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ। एक बार भाव और श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव का जय जयकार करें। बोलिए गुरु नानक देव भगवान की जय।